एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। और आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। 50 साल से ज्यादा पुरानी है, पर आज भी उतनी ही रेलेवेंट लगती है।
बिल्कुल, किताब है वेज ऑफ सीइंग जॉन बर्जर की, और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि भाई आज हम चारों तरफ से तस्वीरों से घिरे, फोन, टीवी, सड़क, हर जगह।
हाँ, पर क्या हम सच में देखना जानते हैं? मतलब क्या हम समझते हैं कि ये तस्वीरें हमें कैसे बदल रही हैं?
यही यही सवाल बर्जर उठाते हैं। ये सिर्फ कोई आर्ट की किताब नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस बारे में है कि ये जो इमेजेस हैं, ये हमारे सोचने का तरीका, हमारी इच्छाएं, समाज को लेकर हमारी समझ, इन सब पर कैसे असर डालती हैं।
खासकर आज जब विज्ञापन और सोशल मीडिया की तो जैसे बाढ़ आई हुई है।
सही कहा। तो आज हम इसी किताब में थोड़ा गहरा उतरेंगे, देखेंगे कि बर्जर हमें क्या सिखाना चाहते हैं।
हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जॉन बर्जर के बारे में थोड़ी बात हो जाए। ये कोई सिर्फ लिखने पढ़ने वाले कला समीक्षक नहीं थे।
नहीं, बिल्कुल नहीं। जॉन बर्जर 1926 से 2017 तो कई चीजें एक साथ थे। ब्रिटिश उपन्यासकार थे, पेंटर भी थे खुद, और एक बहुत मुखर सामाजिक विचारक भी।
और दिलचस्प बात यह है, उन्होंने बकायदा आर्ट स्कूल से पेंटिंग सीखी थी, लंदन के चेल्सी स्कूल ऑफ आर्ट और सेंट्रल स्कूल ऑफ आर्ट से।
हाँ, तो वो कला को ना अंदर से समझते थे, क्रिएटर की नजर से, लेकिन साथ ही वो मार्क्सवादी विचारों से भी प्रभावित थे।
अच्छा,
तो वो हमेशा आर्ट को समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, इन सब बड़े सवालों से जोड़कर देखते थे। वो मानते ही नहीं थे कि कला इनसे अलग कोई चीज है।
मतलब वो पूछते थे कि भाई ये पेंटिंग किसने बनवाई, क्यों, इसका समाज में क्या रोल था, पैसे किसने दिए। ये वो सवाल थे जो अक्सर कला की दुनिया पूछती नहीं थी।
हाँ, और उन्होंने काफी बेबाकी से लिखा भी। न्यू स्टेट्समैन जैसी मैगजीन में उन्होंने कला जगत के जो स्थापित विचार थे उनको सीधी चुनौती दी।
उनकी एक और किताब थी जी, उसे तो 1972 में बुकर प्राइज भी मिला था।
बिल्कुल। और ये जो किताब है वेज ऑफ सीइंग, ये असल में बीबीसी पर उनकी एक टीवी सीरीज आई थी इसी नाम से, उस पर आधारित है। वो सीरीज भी काफी पॉपुलर हुई थी।
तो हम कह सकते हैं कि बर्जर में एक कलाकार की सेंसिबिलिटी थी,
हाँ,
एक क्रिटिक की शार्प नजर थी, मीडिया का अनुभव था और एक सामाजिक सरोकार भी था।
हाँ, इन सबका एक अनोखा मेल था उनमें, और शायद इसीलिए वो तस्वीरों के पीछे छिपे मतलबों को इतनी आसानी से खोल कर रख देते हैं हमारे सामने।
तो फिर ये किताब वेज ऑफ सीइंग आखिर है क्या चीज, क्या सिखाती है हमें?
अगर आसान शब्दों में कहें तो ये हमें तस्वीरें पढ़ना सिखाती है। जैसे हम अक्षर या शब्द पढ़ते हैं, वैसे ही तस्वीरों को समझना, एक तरह से विजुअल लिटरेसी की गाइड है ये।
पर सिर्फ गाइड नहीं है ना, इसमें एक आलोचना भी है।
बिल्कुल, ये सिर्फ सीधी साधी गाइड नहीं है, ये साथ में एक बहुत तीखी आलोचना भी है कि हमारे समाज में तस्वीरों का इस्तेमाल कैसे होता है, खासकर ताकत और पैसे के खेल में।
अच्छा,
बर्जर का एक बड़ा मकसद था कि कला के चारों ओर जो एक एक रहस्य का पर्दा डाल दिया गया है ना, कि ये तो बस महान लोगों के समझने की चीज है, आम आदमी क्या समझेगा, उस पर्दे को हटाना।
वो कहते हैं कि भाई जब हम कोई तस्वीर देखते हैं तो हमारा देखना कभी भी न्यूट्रल नहीं होता। ऐसा नहीं कि बस आंखें देख रही हैं।
हाँ, हम जो देखते हैं वो इस पर निर्भर करता है कि हम पहले से क्या जानते हैं, क्या मानते हैं, समाज में हमारी हैसियत क्या है। हमारी आंखें हमारे दिमाग से, हमारे अनुभवों से जुड़ी हुई हैं।
बिल्कुल, और वो खासतौर पर यूरोप की पुरानी कला जो ऑयल पेंटिंग है उसको देखते हैं।
हाँ, और दिखाते हैं कि कैसे सदियों तक ये पेंटिंग्स जाने अनजाने समाज में मर्दों का दबदबा, अमीर गरीब का फर्क और पैसे को अहमियत देने वाली सोच को मजबूत करती रहीं।
और फिर वो उसी लेंस से आज की दुनिया को देखते हैं, विज्ञापन, फोटोग्राफी, फिल्में।
बिल्कुल, वो कहते हैं कि तरीके बदल गए होंगे लेकिन तस्वीरों के जरिए अपनी बात मनवाने का, कंट्रोल करने का खेल आज भी जारी है। ये किताब कोई आर्ट हिस्ट्री की लिस्ट नहीं देती,
नहीं,
बल्कि कुछ खास उदाहरण लेती है, जैसे न्यूड पेंटिंग्स, प्रॉपर्टी दिखाने वाली पेंटिंग्स, विज्ञापन, और उनसे दिखाती है कि विजुअल चीजें कैसे पावर के काम आती हैं।
चलिए अब किताब के कुछ खास हिस्सों पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। बर्जर की किताब में लिखने वाले निबंधों के साथ साथ सिर्फ तस्वीरों वाले निबंध भी हैं।
हाँ, वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। वो हमें खुद सोचने पर मजबूर करते हैं।
तो पहला निबंध शुरू होता है इस आइडिया से कि देखना शब्दों से पहले आता है। बच्चा पहले देखता है फिर बोलता है, पर हम कैसे देखते हैं ये हमारे ज्ञान और विश्वासों पर निर्भर है।
बिल्कुल, और यहीं पर वो कैमरे के आविष्कार को एक बड़ा टर्निंग पॉइंट मानते हैं। सोचिए, कैमरे से पहले एक पेंटिंग एक ही जगह होती थी, किसी चर्च में, किसी महल में।
हाँ, उसे देखने वहीं जाना पड़ता था, उसकी अपनी एक यूनिकनेस थी, एक ऑरा थी। वॉल्टर बेंजामिन ने इसे ऑरा कहा था।
सही, कैमरे ने क्या किया, उसने उस एक पेंटिंग की हजारों लाखों कॉपी बना दी। अब वो तस्वीर कहीं भी देख सकती थी, किताब में, पोस्टर पर, कहीं भी।
इससे कला आम लोगों तक पहुंची तो।
लेकिन जो लोग कला के मालिक थे,
हाँ,
या उसकी व्याख्या करते थे, उनके लिए ये एक प्रॉब्लम हो गई।
हाँ, उनकी अथॉरिटी कमजोर होने लगी।
तो उन्होंने क्या किया, बर्जर कहते हैं, उन्होंने शुरू किया रहस्यमयीकरण, मिस्टिफिकेशन।
रहस्यमयीकरण, ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है, इसका मतलब क्या हुआ आसान भाषा में?
इसका मतलब है कला को जानबूझकर ऐसा बना देना कि वो आम समझ से परे लगे, उसे पवित्र बताना, आध्यात्मिक कहना, महान प्रतिभा का नमूना, कालातीत सौंदर्य, ऐसी बातें करना।
अच्छा,
और ऐसा करते हुए उसका जो असली कॉन्टेक्स्ट है उसे छुपा लेना।
हाँ,
कि ये पेंटिंग असल में किस समाज में बनी थी, किसने बनवाई थी, क्या दिखाने के लिए, उसका सोशल मतलब क्या था।
ओ, मतलब तारीफ ऐसे करो कि उसके पीछे के सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक मुद्दे दब जाएं।
बिल्कुल, और ये इसलिए ताकि कला का मार्केट वैल्यू बना रहे।
हाँ,
और जिन लोगों के पास वो कला है।
हाँ,
या जो उसे समझते हैं।
हाँ,
उनका रुतबा भी बना रहे।
हाँ,
बर्जा कहते हैं। हाँ, कि हमें इस धुंध को हटाना होगा, कला को उसके असली संदर्भ में देखना होगा।
अब आते हैं बर्जा के बहुत ही फेमस हिस्से पर, कि यूरोप की कला में औरतों को कैसे दिखाया गया है।
हाँ, ये बहुत प्रभावशाली है। इसमें भी पहले एक पूरा निबंध सिर्फ तस्वीरों का है।
हाँ,
सदियों की पेंटिंग्स में औरतों की तस्वीरें, और बिना कुछ लिखे ही वो तस्वीरें एक पैटर्न दिखाती हैं।
क्या पैटर्न?
और फिर बर्जर अपना वो मशहूर वाक्य कहते हैं, पुरुष काम करते हैं और महिलाएं दिखती हैं, पुरुष महिलाओं को देखते हैं, महिलाएं खुद को देखे जाते हुए देखती हैं। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि पश्चिमी संस्कृति में अक्सर मर्द को कर्ता यानी करने वाला, और औरत को एक दृश्य यानी देखे जाने वाली चीज की तरह ट्रीट किया गया है।
वो नग्नता और नग्न में फर्क भी करते हैं ना?
हाँ बिल्कुल, नग्नता यानी बिना कपड़ों के होना, स्वाभाविक, नेचुरल। लेकिन नग्न होना उनके हिसाब से दूसरों के देखने के लिए एक वस्तु की तरह पेश होना है, एक तरह का परफॉर्मेंस।
अच्छा,
बर्जर का तर्क है कि यूरोप की ज्यादातर नग्न पेंटिंग्स में औरत का शरीर एक पुरुष दर्शक के लिए, जो शायद उस पेंटिंग का मालिक भी हो, उसकी खुशी के लिए, उसके प्लेजर के लिए सजाया, संवारा और पेश किया गया है।
मतलब वो सब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट है।
बिल्कुल, वो पैसिव है, उसे पता है कि उसे देखा जा रहा है, उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज, उसका पोज, सब कुछ उस देखने वाले के लिए है।
ये चीज बर्जर कहते हैं औरतों के अंदर एक एक्सप्लिसिट कॉन्शियसनेस पैदा करती है।
हाँ, कि उन्हें लगातार खुद को बाहर से देखना पड़ता है, एक पुरुष की नजर से खुद को आंकना पड़ता है कि वो कैसी दिख रही हैं। वो देखने वाली कम और देखी जाने वाली चीज ज्यादा बन जाती है।
हाँ, बर्जा कुछ अपवाद भी बताते हैं, जैसे रेम्ब्रांट, जिन्होंने शायद इंसानियत को ज्यादा दिखाया।
हाँ, लेकिन वो मुख्य धारा या ट्रेंड को पॉइंट आउट कर रही है।
अगला पॉइंट है ऑयल पेंटिंग और प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का रिश्ता। यहाँ भी एक तस्वीरों वाला निबंध पहले आता है।
हाँ, उसमें क्या दिखता है, खूब सारे फल, खाना, जमीने, जानवर, अमीर व्यापारियों के बड़े बड़े पोर्ट्रेट, और इन सब में जोर किस पर है?
चीजों पर, उनकी बनावट पर, उनकी चमक पर, वो कितनी असली लग रही हैं।
बिल्कुल, बर्जा कहते हैं कि यूरोप में तेल चित्रकला का जो गोल्डन पीरियड था, लगभग 1500 से 1900 तक, वो उसी दौर में पनप रहे पूंजीवाद और निजी संपत्ति को सबसे ज्यादा अहमियत देने वाली सोच से गहराई से जुड़ा हुआ है।
अच्छा, कैसे?
देखिए, तेल रंग की खासियत है कि वो चीजों को बहुत रियल दिखा सकते हैं, कपड़े का टेक्सचर, मेटल की चमक, फल की स्किन। तो ये मीडियम भौतिक चीजों और संपत्ति का जश्न मनाने के लिए एकदम परफेक्ट था।
हाँ, ये बात तो है।
जरा सोचिए, वो पेंटिंग खुद एक महंगी चीज थी, लेकिन उसमें जो दिखाया जा रहा था वो भी मालिक की हैसियत बताता था।
जैसे?
जैसे जमीन की पेंटिंग मतलब मालिक लैंडलॉर्ड है, पोर्ट्रेट में महंगे कपड़े मतलब आदमी अमीर है, खाने पीने की चीजों से भरी पेंटिंग मतलब घर में खूब दौलत है। तो ये कला असल में चीजों पर मालिकाना हक जताने और बाजार में उनकी कीमत लगाने वाले नजरिए को नॉर्मलाइज कर रही थी। उसे सुंदर बना रही थी।
हाँ, यहाँ भी बर्जर कुछ अलग तरह के कलाकारों का जिक्र करते हैं।
हाँ, वो रेम्ब्रा, वर्मियर, गोया जैसों को याद करते हैं जो सिर्फ चीजें दिखाने से आगे गए, जिन्होंने इंसानी भावनाओं या समाज की सच्चाइयों को दिखाया। लेकिन बर्जर का मानना है कि ज्यादातर तेल चित्रकला उस समय के अमीर और ताकतवर वर्ग की सोच को ही दिखाती थी।
और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे चौंकाने वाले कनेक्शन पर। बर्जर इन पुरानी पेंटिंग्स के धागों को सीधे आज के विज्ञापनों से जोड़ते हैं।
हाँ, ये कमाल का एनालिसिस है। यहाँ भी पहले एक तस्वीरों वाला निबंध है जिसमें आज के मैगजीन और होर्डिंग वाले विज्ञापन भरे हैं।
कारें, शराब, कपड़े, हॉलिडे डेस्टिनेशन,
बिल्कुल। और अगर आपने पिछली पेंटिंग्स ध्यान से देखी हो तो समानताएं साफ दिखती हैं। मॉडल्स के पोज, चीजों की चमक दमक पर जोर, वही इच्छा जगाने वाली स्टाइल।
तो बर्जर का तर्क क्या है?
उनका तर्क है कि आज का विज्ञापन, जिसे वो प्रचार या पब्लिसिटी कहती हैं, असल में उसी पुरानी तेल चित्रकला की परंपरा का सीधा वारिस है। दोनों का मकसद एक ही है, मालिक या अब जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, उसकी हैसियत को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, उसका ग्लोरिफिकेशन करना।
पर एक बड़ा फर्क भी बताते हैं वो।
हाँ, एक बहुत बड़ा फर्क है। तेल चित्रकला अमीर लोगों की असली दौलत और हैसियत को दिखाती थी, जो उनके पास सच में थी। विज्ञापन क्या करता है?
वो सपना बेचता है।
बिल्कुल, वो हमें एक भविष्य की हैसियत का सपना बेचता है। वो चीजें दिखाता है जो हमारे पास हो सकती हैं अगर हम वो प्रोडक्ट खरीद लें।
अच्छा, और ये काम कैसे करता है?
बर्जर कहते हैं ये पहले हमें हमारे आज के जीवन से थोड़ा असंतुष्ट महसूस कराता है। हमें लगता है कि हमारे जीवन में कुछ कमी है, कुछ मिसिंग है।
और फिर
वो प्रोडक्ट उस कमी को पूरा करने वाले जादुई समाधान की तरह पेश किया जाता है, और ये पैदा करता है ग्लैमर।
ग्लैमर,
और ग्लैमर बर्जर के अनुसार असली खुशी नहीं है, वो खुशी की दिखावट है, एक ऐसी स्थिति जिसे देखकर दूसरे हमसे जलें, ईर्ष्या करें। इट्स अबाउट बीइंग एनवीड बाय अदर्स।
क्या बात है, मतलब विज्ञापन पहले हमें इंफीरियर फील कराता है, फिर कहता है ये खरीद लो तो तुम सुपीरियर हो जाओगे, दूसरे तुमसे जलेंगे।
सही पकड़ा। और ऐसा करने के लिए वो उन्हीं पुरानी पेंटिंग्स वाली भाषा का इस्तेमाल करता है, चीजों को आकर्षक दिखाना, खास पोज, खास लाइटिंग, ताकि हमें वो वाड़ा सच्चा लगे, रियल लगे।
और ये पूरी चीज फिर उपभोक्तावाद को, कंज्यूमर कैपिटलिज्म को मजबूत करती है।
बिल्कुल, जहां हमें लगता है कि खुशी खरीदने से ही मिलेगी, हमें लगातार कुछ न कुछ चाहते रहने के लिए उकसाया जाता है।
तो इस पूरी बातचीत से कुछ मेन पॉइंट्स क्या निकल कर आते हैं? मेरे लिए तो सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि देखना सिर्फ आंख का काम नहीं है, ये सीखा हुआ है। हम कैसे देखते हैं ये हमारी संस्कृति, इतिहास, पावर स्ट्रक्चर, इन सब बातों से तय होता है।
हाँ, और कला को जो रहस्यमयी बना दिया जाता है वो इसी बात को छुपाने का एक तरीका है।
बिल्कुल। दूसरी अहम बात मेरे लिए है लिंग और नजर का रिश्ता।
हाँ, कि कैसे सदियों से तस्वीरों में औरतों को एक खास तरीके से पुरुष की नजर से देखे जाने वाली वस्तु की तरह पेश किया गया, और ये पैटर्न आज भी मीडिया में, विज्ञापनों में दिखता है। इसे पहचानना बहुत जरूरी है।
तीसरी बात, कला पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स से अलग नहीं है।
सही, जैसे यूरोप की तेल चित्रकला ने प्राइवेट प्रॉपर्टी के आइडिया को नॉर्मल और खूबसूरत बनाया, अक्सर सुंदरता के पीछे भी कुछ इंटरेस्ट छिपे हो सकते हैं।
चौथी, कैमरे का इम्पैक्ट।
हाँ, कि कैमरे और मैकेनिकल रिप्रोडक्शन ने कला का मतलब ही बदल दिया। अब तस्वीरें सब तक पहुंच सकती हैं, डेमोक्रेटाइज हुई हैं, लेकिन उनका मैनिपुलेशन भी आसान हो गया है। तस्वीर का मतलब उसके कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है कि उसे कहाँ कैसे दिखाया जा रहा है।
और पांचवी, जो आज शायद सबसे रेलेवेंट है, विज्ञापन एक तरह का कल्चरल मैनिपुलेशन है।
बिल्कुल, विज्ञापन सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचता, वो लाइफस्टाइल बेचता है, सपने बेचता है। वो कला की तकनीकों का इस्तेमाल करके हमें लगातार कंज्यूम करने और कैपिटलिस्ट सिस्टम को बनाए रखने के लिए तैयार करता है।
हाँ, सोचिए जरा, भारत में कैसे विज्ञापन हमारी एस्पिरेशंस को, हमारी उम्मीदों को टारगेट करते हैं। बॉलीवुड में या न्यूज में जो छवियां दिखाई जाती हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं पावर इक्वेशंस दिखाती हैं। इस किताब में कई ऐसी लाइनें हैं जो एकदम दिमाग में बैठ जाती हैं, जैसे वो पहली बात।
कौन सी?
हम कैसे देखते हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम क्या जानते हैं या क्या मानते हैं। मतलब साफ है, हमारी नजर न्यूट्रल नहीं है, हमारे अपने बायस हैं।
हाँ बिल्कुल, और औरतों के चित्रण पर वो लाइन,
पुरुष काम करते हैं और महिलाएं दिखती हैं, पुरुष महिलाओं को देखते हैं, महिलाएं खुद को देखे जाते हुए देखती हैं।
उफ, ये लाइनें आज भी कितनी सटीक लगती हैं जब हम मीडिया को देखते हैं ना।
सही में, और कला के रहस्यमयकरण पर वो क्या कहते हैं?
कला का रहस्यमयकरण इसी किया जाता है ताकि एक छोटा सा ताकतवर तबका इतिहास को ऐसे गढ़ सके जिससे लगे कि हमेशा से उन्हीं का राज सही था।
यानी आर्ट हिस्ट्री का इस्तेमाल भी विचारधारा को सही ठहराने के लिए होता है।
बिल्कुल। और विज्ञापन पर वो लाइन,
हाँ,
विज्ञापन सिर्फ अलग अलग कंपनियों का शोर नहीं है, यह अपने आप में एक भाषा है जो हमेशा एक ही बात कहती है कि कुछ और खरीद कर हम खुद को या अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं।
ये दिखाता है कि कैसे विज्ञापन हमें लगातार अधूरा महसूस कराता है ताकि हम और खरीदें। तो इन सब बातों का हमारी रोज की जिंदगी में क्या मतलब निकलता है, हम क्या कर सकते हैं?
सबसे पहली चीज तो है मीडिया लिटरेसी।
हाँ।
हम जो देख रहे हैं विज्ञापन, फिल्में, टीवी शोज, यहाँ तक कि सोशल मीडिया, उसे ज्यादा क्रिटिकली देख सकते हैं।
हाँ, हम सवाल पूछ सकते हैं, ये विज्ञापन असल में क्या बेच रहा है, प्रोडक्ट या कोई फीलिंग? ये मुझे क्या कमी महसूस कराने की कोशिश कर रहा है?
बिल्कुल। क्या इसमें ग्लैमर या अथॉरिटी दिखाने के लिए क्लासिकल आर्ट की कोई ट्रिक इस्तेमाल हुई है? आजकल इंस्टाग्राम पर लोग जिस तरह अपनी परफेक्ट लाइफ दिखाते हैं, वो भी तो एक तरह का सेल्फ ब्रांडिंग है। बर्जर की बातें वहां भी लागू होती हैं।
सही बात है। और अगली बार जब हम किसी म्यूजियम या आर्ट गैलरी जाएं,
हाँ, तो शायद हम पेंटिंग्स को सिर्फ सुंदर या अजीब कहकर आगे ना बढ़े। हम सोच सकते हैं ये किसने बनवाई होगी, क्यों, इसमें जो दिखाया गया है वो उस जमाने के बारे में क्या कहता है, अगर ये न्यूड है तो किसके लिए बनी थी, किसके नजरिए से।
ये समझ हमें फिल्मों में, टीवी पर या असल जिंदगी में भी जेंडर रिप्रेजेंटेशन को बेहतर तरीके से समझने में मदद करती है।
और जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं, फोटोग्राफर, डिजाइनर, फिल्म मेकर, उनके लिए ये अपनी विजुअल भाषा के प्रति ज्यादा जागरूक और एथिकल बनने का एक मौका हो सकता है।
हम नेताओं की तस्वीरों का विश्लेषण भी बेहतर ढंग से कर सकते हैं, वो क्या इमेज प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अगर मुझसे पूछे तो मेरे लिए सबसे बड़ी टेक अवे यही है कि देखना एक पैसिव बायोलॉजिकल एक्ट नहीं है, ये एक सीखी हुई पॉलिटिकल क्रिया है। और ये समझना कि कैसे इमेजेस का रहस्यमयीकरण होता है हमें पावर देता है।
और मेरे लिए सबसे स्ट्राइकिंग बात थी पुरानी तेल चित्रकला और आज के चमकते दमकते विज्ञापनों के बीच का वो सीधा कनेक्शन। ये दिखाता है कि विजुअल भाषा का इस्तेमाल कैसे सदियों से होता आ रहा है, बस शायद मकसद थोड़े बदल गए हैं। आज जब हम सचमुच तस्वीरों के सैलाब में जी रहे हैं, तब जॉन बर्जर की ये बातें हमें एक जागरूक, सोचने समझने वाला दर्शक या नागरिक बनने में मदद करती हैं। ये हमें सिर्फ चीजों के पीछे भागने वाले कंज्यूमर होने से बचाती हैं।
और एक आखिरी ख्याल ये आता है कि आज के डिजिटल युग में, जहां हर कोई इमेज बना सकता है, शेयर कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, वहां ये देखने के तरीके शायद और भी ज्यादा जरूरी और कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, है ना?
हाँ, बिल्कुल, सोचने वाली बात है ये।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।